আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین جل جلالہ ومنوالہ اس آیت بینات میں ارشاد فرما رہا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو اس کے کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو. اب دیکھیے عبادات کی تین قسمیں ہیں, بدنی, مالی اور ایک وہ جو ان دونوں کا مجموعہ ہو. بدنی عبادت جیسے نماز, روزہ, مالی عبادت زکوٰۃ, صدقات, خیرات, اور وہ عبادت جو ان دونوں کا مجموعہ ہے وہ حج ہے. اس لیے کہ اس میں مال اور جان یعنی بدنی قوت یہ دونوں اس میں خرچ ہوتی ہیں. جب آپ نے ٹکٹ لیا آپ کا مال خرچ ہوا, آپ نے فارم بھرا آپ کا مال خرچ ہوا, آپ نے زیادہ راہ رکھا مال خرچ ہوا, احرام خریدا, دیگر چیزیں جو انتظامات ہیں اس میں آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ گھر سے احرام باندھ کے چلے اور وہاں پر طواف کیا, سعی کی, حج کے تمام ارکان, منا, مزدلفہ, عرفات, یہ تمام چیزیں کی, تو اس میں بدنی قوت خرچ ہوئی. اس لیے حج جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جو مالی اور بدنی دونوں عبادات کا مجموعہ ہے, اسی لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے. حدیث شریف کے مطابق جس نے صحیح طور پر حج کیا اور تمام اراکین صحیح طریقے پر ادا کیے, جب وہ حج کر کے لوٹا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا. اور ایک روایت میں آیا کہ جیسا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا, یعنی گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو گئے. ظاہر ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے. تو مثال یہ دی گئی کہ حج کر کے آنے والا, لیکن وہ جس نے بالکل صحیح طور پر حج کیا ہو تو وہ ایسا بن کے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. اب آئیے ذرا سا غور کریں کہ حج ہے کیا. اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا, لیکن نماز میں لباس کی قید نہیں لگائی. کسی رنگ, کسی کپڑے, کسی جگہ, کسی چیز کی قید نہیں لگائی. جبکہ گزشتہ امتوں میں عبادات کی جگہیں مقرر تھیں, اسی جگہ عبادت ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لیے میرے خدا نے روئے زمین کو مسجد بنا دیا, محبوب جہاں چاہو پڑھو. سرکار کے صدقے میں ہمیں کتنی آسانی ملی. اگر جگہ مقرر کر دی جاتی تو آپ غور کریں کہ کتنی پریشانی ہوتی, کہ اگر ہم گھر سے باہر ہیں تو نماز ادا نہیں کر سکتے, گھر میں ہی ادا کی جائے. یا کوئی بھی جگہ, کسی بھی مقام کو مقرر کر دیا جاتا اور آپ اس مقام سے دور ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے. پوری روئے زمین کو مسجد بنا, جہاں چاہو پڑھو. آپ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں, آپ کسی پارک میں پڑھ سکتے ہیں, گھاس پہ پڑھ سکتے ہیں, کچی زمین پر پڑھ سکتے ہیں, سڑک پہ پڑھ سکتے ہیں, جہاں چاہیں نماز پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے. اچھا, جگہ کی قید نہیں, دوسرے لباس کی قید نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ کی قید نہ لگاتا لیکن لباس کی قید لگا دیتا, इस रंग का लिबास, मिसाल के तौर पर सफेद लिबास पहनना है, इसके अलावा नहीं पहनना, या कोई भी कलर बता दिया जाता कि ये रंग इस्तेमाल करना, कितनी परेशानी की बात। जो अमीर लोग हैं वो तो कर सकते थे, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास तन ढापने के लिए कपड़ा नहीं है, वो कैसे इबादत करते, वो कैसे नमाज पढ़ते। इसीलिए खालिक कायनात ने नमाज के लिए ना जगह की कैद रखी ना लिबास की कैद रखी। जहां चाहो नमाज पढ़ो, जैसा चाहो लिबास पहनो, जिस रंग का चाहो पहनो, लेकिन एक शर्त है, साफ सुथरा हो, पाकीजा हो, गंदा ना हो, गलीज ना हो। साफ सुथरा लिबास आप पहने हैं, सतर पोशी हो, आपकी नमाज हो जाएगी। तो अब पता ये चला कि नमाज में जगह की कैद नहीं और नमाज में लिबास की कैद नहीं। अच्छा, रखी क्यों नहीं? इसलिए कैद नहीं रखी कि नमाज 5 मरतबा है एक दिन में, 5 मरतबा। अब 5 मरतबा अगर वो लिबास तब्दील करे या 5 मरतबा उसी जगह जाए जहां पे नमाज अदा होगी, उसके अलावा नहीं होगी, तो कितनी मुश्किल है, कितनी मुशक्कत है। तो फिर तो दीन में मुश्किलात हो जाएंगी, जबकि इन दीन युसरुन, दीन में आसानी है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, अल्लाह फरमाते हम किसी नफ्स को, किसी जान को ऐसी तकलीफ नहीं देते कि जिसको उठाने की वो ताकत ना रखता हो। तो एक दिन में अगर 5 मरतबा लिबास तब्दील करना पड़े और एक दिन में 5 मरतबा उसी जगह पहुंचना पड़े, चाहे आप कितनी ही दूर हो कि जहां नमाज अदा होगी, तो आप गौर कर सकते हैं कि कितनी परेशानी की बात। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त नमाज तो मुकर्रर कर दी, अपने बंदों पर फर्ज करार दे दिया नमाज को, लेकिन लिबास और जगह की कैद नहीं रखी। हां, एक चीज है, जबान की कैद लगा दी। नमाज में वही जबान बोलनी है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान। आप अंग्रेजी में नमाज नहीं पढ़ सकते, आप उर्दू में नमाज नहीं पढ़ सकते, आप किसी भी जबान में नमाज नहीं पढ़ सकते। अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि हम तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ उठाते हैं, कहते हैं अल्लाहु अकबर, ठीक है ना। अब ये अरबी का लफ्ज है और इसके माने हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर। अब अगर हम उर्दू में कहें कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ये कहकर नियत बांध लें, नमाज हो जाएगी? नहीं। क्यों? जबान वही बोलनी है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबान की कैद लगा दी। अब आप क्या है, अंग्रेजी बोलते हो, आप उर्दू बोलते हो, आप पंजाबी बोलते हो, आप फ्रेंच बोलते हो, आप पश्तो बोलते हो, दुनिया की कोई जबान बोलते हो, बोलते रहें, लेकिन जब नमाज पढ़ेंगे वही जबान बोलेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान। ये कैद लगा दी। अच्छा, 5 वक्त नमाज हो रही है, उसी जबान में हो रही है और उसी अदा पर हो रही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा, अदाएं भी वही। सरकार ने फरमाया ना, सल्लू कमा राई तुमोनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा कि मुझे देखते हो, जैसा मुझे देखते हो। सरकार ने नमाज पढ़ी ना, सहाबा ने उनको देखा, सहाबा को ताबईन ने देखा, ताबईन को तबे ताबईन ने देखा, उनको बुजुर्गान दीन ने देखा, उनको आइमे मुज्तहिदीन ने देखा, उनको औलिया कामिलीन ने देखा, होते 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 सिलसिला हम तक पहुंच गया। तो सबसे पहले नमाज अदा की नबी पाक अलैहिस्सलाम और फरमाए सल्लू कमा राई तुमुनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा कि मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अब वही अदा जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा है, उसी अदा पर अदा। और अगर उस अदा के खिलाफ है, मिसाल के तौर पर आप कहें कि मैं फजर में 8 रकात पढ़ूंगा या 12 रकात पढ़ूंगा, नमाज हो जाएगी? नहीं। क्यों? हम कहेंगे कि ऐ इलाहुल आलमीन, हम तो नमाज में ज्यादती कर रहे हैं, तेरे नबी ने तो 4 पढ़ी थी, 2 सुन्नत और 2 फर्ज, हमने तो कहा नहीं हम और आगे बढ़ के 8 पढ़ें या 12 पढ़ें। इरशाद रब्बानी यही होगा कि नहीं, जो मेरे महबूब की अदा है उसी अदा पर नमाज अदा। आप क्या कितनी उसमें ज्यादती कर ले, लेकिन जो रकातें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर फरमा दी, जिस तरह नमाज आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई, बिल्कुल उसी अदा पर आपको अदा करनी है, तब नमाज अदा है। और अगर अदा के खिलाफ है तो फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल ही नहीं। क्यों? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा के खिलाफ। अब इसकी मिसाल एक आप ये देखें कि हज करने के लिए लोग जाते हैं, अराफात में मगरिब का वक्त हो गया, जहां भी मगरिब का वक्त हो तो हुक्म क्या है? नमाज अदा कर। लेकिन अराफात में नहीं, मगरिब का वक्त हो गया, आप वहां से मुजदलफा जाएं और वहां मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ें, एक नमाज के वक्त में दूसरी नमाज पढ़ी जाए तो कजा है, यानी जोहर के वक्त अगर फजर पढ़ेंगे तो कजा है, असर के वक्त जोहर पढ़ेंगे तो कजा है, मगरिब के वक्त असर पढ़ेंगे तो कजा है, और इशा के वक्त मगरिब पढ़ेंगे तो कजा है। जाहिर है जब वो अपनी औकात से अपने वक्त से अलग हो जाएगी तो कजा हो जाएगी, यानी मगरिब मगरिब के वक्त में गुरूब आफ्ताब के बाद है ना। लेकिन हुक्म क्या है? हज में अराफात में है, एहराम में है, तमाम हुज्जाज मौजूद हैं, लाखों, नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? मुजदलफे जाएं और इशा का वक्त हो गया, अब मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ें तो कजा नहीं हुई। क्यों? हुक्म होगा नहीं, यही अदा है। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब की अदा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाया, तो जो उनकी अदा है उनकी अदा पर अदा कबूल है, और अदा के खिलाफ है तो ना मंजूर है ना मकबूल। कोई हाजी साहब कहेंगे नहीं जी मैं तो बहुत बड़ा हाजी हूं, बहुत बड़ा नमाजी हूं, मैं तो मगरिब के वक्त ईशा की ईशा के वक्त पढ़ूंगा, मैं तो अराफात में ही मगरिब पढ़ लूंगा, जैसे ही टाइम हो जाए कबूल हो जाएगी। नहीं, नमाज वही कबूल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा के मुताबिक है, जो अदा के खिलाफ है ना मंजूर है ना मकबूल। अच्छा, ये तो नमाज। अब हज में देखें, नमाज में जगह की कैद नहीं, नमाज में लिबास की कैद नहीं, लेकिन नमाज में सिर्फ जबान की कैद, वही जबान बोलनी है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली। लेकिन हज में क्या हुआ? अल्लाह तबारक व ताला ने लिबास की कैद भी लगा दी। तुम अपने मुल्कों में जो लिबास पहनते हो पहनते रहो। अब आप देखिए ना, मुख्तलिफ ममालिक के लिबास अलग हैं। पूरी दुनिया पे अगर हम नजर डालें, यूरोप अमेरिका वाले जो हैं पैंट शर्ट इस्तेमाल करते हैं, कोट इस्तेमाल करते हैं, ओवर कोट इस्तेमाल करते हैं, सर्द ममालिक हैं, वहां सर्दी ज्यादा होती है, बर्फबारी होती है। एशिया की तरफ आ जाएं तो कुर्ता पजामा पहनते हैं, तहमत बांधते हैं, कुर्ता पहनते हैं, हल्के लिबास इस्तेमाल करते हैं, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती। कुछ सर्द मालिक हैं, कुछ गर्म हैं, बहुत से जो है हैड ओढ़ते हैं, टोपा पहनते हैं, कानों को ढांपते हैं मौसम के हिसाब से। तो लिबास की कैद नहीं रखी, तुम जो लिबास पहनो पहन लो, लेकिन नमाज अदा करो। तुम अपने घरों में जो लिबास पहनते हो पहनते रहो, तुम अपने मुल्कों में जो लिबास पहनते हो पहनते रहो, लेकिन जब अपने घरों से चलकर मेरे घर में आओगे बैतुल्लाह में और हज्जे बैतुल्लाह की सआदत हासिल करना चाहोगे, तो वही लिबास पहनना है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना। दो बगैर सिली चादरें, एक नीचे बांध लो एक ऊपर, और इसमें किसी की कैद नहीं है। वजीर हो, अमीर हो, फकीर हो, कबीर हो, यहां तक के सऊदी अरब का शहनशाह भी अगर हज करेगा तो ये नहीं कि अपने जुब्बे में पहन आकर अपना लिबास पहनकर, दो बगैर सिली चादरें जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहने, वही लिबास पहनना। कोई कहेगा नहीं जी मैं तो बहुत अमीर आदमी हूं, मैं ये नहीं पहन सकता, मैं कोई कीमती लिबास पहनकर हज करूं, ना मकबूल ना मंजूर। और इसमें हिकमत क्या थी? इसमें हिकमत यह है कि देखें, इंसान को गुरूर होता है लिबास पर, इंसान को गुरूर होता है घर पे, इंसान को गुरूर होता है जबान पे, और इंसान को गुरूर होता है अपने माल पर, अल्लाह तबारक मुताला ने सारे गुरूर और तकबर जो थे तोड़ दिए, चकनाचूर कर दिए। अब लिबास का गुरूर, एहराम पहनाकर लिबास का गुरूर तोड़ दिया। आप देखें ना, बहुत से लोग कैसे लिबास पहनते हैं, कीमती किस्म के लिबास। अगर कोई पैंट शर्ट पहनता है तो बेहतरीन कपड़ा लेकर आएगा, उसके बाद उसको सिलवाएगा, फिर पहनेगा। कोई किस तरह का लिबास, कोई किस तरह, कोई कढ़ाई अपने कॉलर पे करवा रहा है, कोई कफ इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सारी चीजें। हर आदमी कहता है मैं वो लिबास पहनूं जिसमें बहुत खूबसूरत लगूं। लिबास का गुरूर होता है ना, मैं सबसे अच्छा लिबास पहनता। तो एहराम ने लिबास के गुरूर को तोड़ दिया। एक चादर नीचे बांध लो, एक ऊपर बांध लो, खत्म। लिबास का गुरूर ही तोड़ दिया, सबका लिबास एक कर दिया। अब क्या है, जबान का गुरूर भी तोड़ दिया। कोई इंग्लिश बोलता है तो कहते इंटरनेशनल जबान है, नहीं, वहां पर एक ही जबान, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सबकी जबान एक, सबके लिबास एक, सबका जहन एक, और सब एक ही घर में। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, अब यदो असफद अहमर असफर आला अदना खुर्द और बुजुर्ग, सबको मिलाकर एक ही कुनबा एक ही घर में बसाया है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई कोई जबान बोलने वाला है, लेकिन सबको मिलाकर एक ही कुनबा एक ही घर में बसाया है। अब सबकी जबान एक ही है, तुम कोई भी जबान बोलते हो बोलते रहो, लेकिन मेरे घर में आओगे वही जबान बोलनी है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान। अच्छा, लिबास के गुरूर को तोड़ दिया। अब उसके बाद आप गए मीना, मीना में खेमे लगे हुए, कपड़े के खेमे। उस जमाने में जब आग लगी तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने फाइबर के बना दिए, पहले वैसे खेमे थे ना, अब और जरा टेंट की तरह लगाकर मजबूत किस्म के फाइबर के बना दिए, जो ऊंचे भी हैं, उसमें एसी भी लगा दिया और बहुत सारी आसाइशें कर दी, लेकिन घर जैसा नहीं। जो किसी बंगले में रहता हो, हजार गज के बंगले में, जिसका कमरा बहुत बड़ा हो और अटैच बात हो और ये हो वो हो सारी चीजें, घर का गुरूर तोड़ दिया। सब एक ही कैंप में लेटे हुए, क्या कोई हजार गज पे रहने वाला हो, कोई 2000 गज पे, या कोई एक कमरे में रहने वाला हो, किसी का घर एक कमरे के बराबर हो या किसी का घर पूरा महल हो। घर के गुरूर को तोड़ दिया, सब एक साथ बैठे, एक साथ बैठे, एक साथ लेटे, सो रहे हैं, जाग रहे, सब एक साथ। पहले लिबास के गुरूर को तोड़ा, फिर घर के गुरूर को तोड़ा। अब क्या हुआ, यहां तो फिर भी फाइबर के थे, ऊंचे थे, जो खेमे थे ना ऊंचे थे, बुलंद। यहां से गए अरफात, वहां पर वही कपड़े के खेमे, और इतनी नीचे कि आप हाथ उठाएं तो उसके हाथ लगा ले छत को, और वहां पर ये आसाइश नहीं, पंखे लगे हुए हैं, एसी नहीं है, मुख्तलिफ चीजें। तो यहां आकर उसको तोड़ दिया, और यहां से जब मुजदलफे गए तो वहां पर तो खेमा ही नहीं है, सभी चीज खत्म कर दी। नीचे जमीन है, ऊपर आसमान, बिल्कुल खुले मैदान में तमाम लोग, मर्द औरत, बच्चे, मर्द बूढ़े जवान, सब उसी जगह, नीचे जमीन ऊपर आसमान। मीना में खेमे थे जरा बेहतरीन, अरफात में उससे कम, और मुजदलफा में सब हटा दिए, और रात ऐसे ही गुजार ली। अच्छा, अब रात गुजार ली, उसके बाद रमी, उसके बाद कुर्बानी। अब कुर्बानी, अब लोगों को अपने बालों पर गुरूर होता है, कोई किसी स्टाइल के बाल बनाता है, कोई किसी स्टाइल के बाल बनाता, और आजकल के नौजवान तो अजीब अजीब हरकतें करते, कोई तेल लगा के इधर मांग निकाली तो तेल लगा के उधर निकाल ली, किसी ने ऐसा स्टाइल, किसी ने ऐसा स्टाइल। वहां पे क्या हुआ, हलक और कसर दो चीजें रखी, हलक अफजल है, कसर उससे कम है, यानी बिल्कुल कम बाल कर ले वो कसर है, और अगर आपने उस तरह फिरवा दिया तो वो हलक कहलाता है और वही अफजल है। और बुजुर्गों ने भी ये फरमाया कि जब आदमी इतना पैसा खर्च करके वहां जाता है तो उसको ये क्या देखना, उसको तो ये देखना चाहिए कि जो अफजल चीज है वो करे, बाल तो फिर कुछ दिन में निकल आएंगे, लेकिन अफजलियत हासिल हो जाएगी। तो जब आपने उस तरह फिरवा लिया, अब सारे स्टाइल खत्म हो गए। जो नौजवान जो स्टाइल बनाते हैं ना, सारे स्टाइल, इसको हम कहते हैं फ्री स्टाइल, ये बिल्कुल ही फ्री हो गया। अब इसमें कोई स्टाइल रहा ही नहीं। अब आप देखें, मकान के गुरूर को तोड़ा, लिबास के गुरूर को तोड़ा, बालों के गुरूर को तोड़ा, हर चीज के गुरूर तकबर को तोड़कर चकनाचूर कर दिया और अपनी बारगाह में आज इनके सारी का पैकर बना दिया। ये है हज। हकीकत में अगर कोई सही हज करके आता है तो उसको देखकर लगता है कि वाकई यह हाजी है। उसके अंदर नरमी पैदा हो जाती है, उसकी इबादत में खुशू और खुजू पैदा हो जाता है, वो आजजी इनके सारी का पैकर हो जाता है, तकब्बुर खत्म हो जाता है, गुरूर खत्म हो जाता है और बंदगी का जज्बा, इबादत का जज्बा, शौक, नमाज का शौक, ये तमाम चीजें उसके अंदर पैदा हो जाती। तो हज एक ऐसी इबादत है जो बदनी और माली इन दोनों का मजमुआ है, इसीलिए इसकी फजीलत ज्यादा है। इसमें माल भी खर्च होता है, इसमें बदनी कुव्वत भी खर्च होती है। इंसान मेहनत करता है, सही करता है, तवाफ करता है, मिना, अरफात, मुजलफा में जाता है, कहीं पैदल चलता है, कहीं बसों में सफर करता है, कहीं टैक्सियों में सफर करता है। गरज ये कि इतनी मेहनत मुशक्कत उठाता है और सही तौर पर जब वो अदा करता है तो हदीस शरीफ के मुताबिक उसको सनद मिल जाती है कि जब वो हज करके लौटा तो वो ऐसा है जैसा कि आज ही पैदा हुआ, उसके माने आज ही उसको जना है। तो अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हज मकबूल की सआदत अता फरमाए, आमीन। हज के बाद फिर हाजिरी है मदीने मुनव्वरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और ये भी एक बहुत बड़ी सआदत है। अफसोस है उन लोगों पर के जो बगैर हाजिरी दिए वापस चले आते हैं, हालांकि ये तो नामुमकिन है, हज है ही उनकी वजह से। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाह मरकदुहू ने फरमाया था, होते कहां खलील ओ बिना काबा ओ मिना, होते कहां खलील ओ बिना काबा ओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो ना इब्राहिम खलीलुल्लाह होते, ना मूसा कलीमुल्लाह होते, ना मिना, अरफात, मुजलफा, ये कोई चीज ना होती अगर आप तशरीफ ना लाते। या आप ही के दम कदम से तो है। तो हज मिला तो उन्हीं की बारगाह से, नमाज मिली तो उन्हीं की बारगाह से, रोजा मिला, तमाम चीजें मिली, अहकामात इस्लाम, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिले। तो अगर उन्हीं की बारगाह में हाजिरी ना दी तो फिर हज कैसे कबूल। सरकार ने फरमाया, मन हज्जा लम यजुरनी फकत जफानी, जिसने हज किया और मेरी जियारत नहीं की उसने मुझ पर जुल्म किया। तो वहां की हाजिरी तो मोमिन की मेराज है। जब वहां पर हाजिर हो, बा अदब मवाजे शरीफ में हाजिरी पेश करें, आंखें बंद करके आज दिन के सारी का पैकर बने हुए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर इसके अलावा कोई भी दुरूद और कोई भी ऐसी नात कि जिस पर आपको रिक्कत तारी हो जाए, वा अदब तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बारगाह रिसालत में पेश करें, अदब मलहूज रखें, मदीने तैयबा की ज्यारतें करें, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद क़ुबा, मस्जिद जुमा, मस्जिद फतह, मस्जिद अली, मस्जिद उमर, मस्जिद अबू बकर और इसी तरह दीगर मकामात, गार हिरा, गार सौर, जबल उहद, सैयद शोहदा सैयद नमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में और दीगर ज्यारतें जो हैं, इन तमाम मकामात पर जाएं, बाअदब हाजिरी दें, खुसूसन सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बाअदब हाजिरी दें और फिर हर जगह दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे हज को कबूल फरमा लें। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सदक़े में हज को कबूल फरमा ले। तो हमें चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को अपने पेश नज़र रखें और हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करें। अल्लाह तबारक व ताला मुझे, आपको, सबको और सब सुनने वालों को हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए और उस मकाम की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। रब्बिल आलमीन।